तो हम सब के बीच में पवित्रता और निर्मलता की मूरत आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी विराजमान है। रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत और सत्कार, अभिनंदन, वंदन और नमन। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन है। 1962 में जब आपने अपनी मेडिकल स्टडीज पूरी की तब आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला, और चूंकि मुंबई में मम्मा बाबा और तमाम दादियों का आना जाना रहता था तो आरंभ से ही दीदी ने सभी दादियों की, मम्मा बाबा की पालना प्राप्त की है। और फिर बाबा के ही डायरेक्शन के अनुसार 1966 में सेवा केंद्र भी खोला, क्लिनिक भी खोला, और दोनों रीति से मानवता की समाज सेवा करते रहे। और फिर 71 में बाबा ने आपको विदेश सेवा के लिए सिलेक्ट किया। 71 से 78 तक विदेश की अलग अलग धरनी पर भ्रमण करते हुए आपने खूब सेवाएं की, बाबा का संदेश पहुंचाया। शुरू में आप लंदन गए, यूके, और उसके बाद अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस आदि आदि कई स्थानों पर जाकर सेवाओं की शुरुआत की। और उसके बाद 1978 में आपने ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया, और 1978 से 2008 तक सिडनी में रहते हुए पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में सेवाओं का विस्तार किया कि आज की डेट में इस एशिया पैसिफिक रीजन में करीब 18 देश हैं जहां बाबा के सेवा केंद्र हैं, बाबा के बच्चे हैं और सेवाएं चल रही है। तो आप हम कहेंगे कि एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल डायरेक्टर हैं। और फिर तो 2009 में बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर में बुला लिया, तब से ही लेकर आप ज्ञान सरोवर को देख रहे हैं, आप वहां के डायरेक्टर हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला, दादियां अव्यक्त होती चली, बाबा ने आपके कंधों पर और एक जिम्मेवारी रखी। वर्तमान में आप यज्ञ के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। लेकिन जितनी ही जिम्मेवारियां आपके कंधों पर बढ़ती जा रही हैं, उतना ही हम प्रैक्टिकली आपको नजदीक से देखते हैं, उतना ही उपराम स्थिति है। जितने ही ज्यादा बिजी उतने ही ज्यादा इजी, इजी और बिजी का बैलेंस दीदी के जीवन से प्रैक्टिकली हर कोई देखता है। तो आज हम ऐसी महान हस्ती से सुनेंगे संतुष्टता क्या होती है। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। संतुष्टता बड़ा गुण है, और संतुष्ट माना सब गुण है, तब तो कोई व्यक्ति संतुष्ट रहता है। यदि कमी है तो संतुष्ट नहीं। और ऐसा बनने के लिए हमें फॉलो मदर फादर करना चाहिए। उसमें क्या क्या बात है कि हर कदम, बोल, संकल्प, कर्म में समान है, ये चेक करना है हमको। मां सदा अशरीरी रहते थे और निराकारी स्थिति में भी रहते थे। कर्म बंधन से मुक्त थे, कर्म संबंध निभाया, अपने जो लौकिक संबंधी थे उनको 14 साल तक साथ में रखा, उनसे भी संबंध निभाया। देह में रहते विदेही स्थिति धारण की, तन मन के बंधनों से मुक्त रहे, मगन अवस्था रही, याद में लगन और मगन स्थिति रही, और धन भी एक एक रुपया सफल किया, कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाया। तो हमें ब्रह्मचर्य तो पालन करना है, परंतु साथ साथ ब्रह्माचारी भी रहना है, अर्थात ब्रह्मा का आचार विचार फॉलो करना है। हमारी स्थिति शिव बाबा जैसे बनानी है तो आचरण ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बाबा जो मुरली चलाते थे अर्थात ज्ञान सुनाते थे ऑथोरिटी से, भारत में रहना और कहना गुरुओं को छोड़ो, वेद शास्त्र छोड़ो, ऑथोरिटी चाहिए ना। शुरू में तो ब्रह्मा बाबा को सर्विस समाचार सुनने का शौक होता था, जो भी आता था सेवा करके सुनाते थे अथवा लिखते थे अपने शहर से कि ये समाचार है। परंतु अंत में तो बाबा ज्यादा एकांतवासी थे, सुनाने वाले को भी कहते थे एसेंस में सुनाओ, या कोई लंबा सुनाते थे तो कई बार खुद खो जाते थे याद में, और अंत में पूछते थे बेटी क्या कहा। परंतु बच्चों को खुश करते थे, समाचार जरूर सुनते थे। सर्व के सहयोगी स्नेही गुणग्राही बनकर, लेकिन फॉलो फादर करना है हमें। बेहद का वैराग्य चाहिए, कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन राज ऋषि बनना है। बाबा सदा उमंग उल्लास में रहते थे, सबको उमंग उल्लास में रखते थे, बढ़ाते थे उमंग और लाभ। वाणी में हिम्मत, ना उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया, सेवा के योग्य बनाया। मैंने दादी जानकी को भी देखा, जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर खरीदा तो मंदा बहन 21-22 साल की होंगी, उसको निमित्त बनाया। मुझे तो सरप्राइज हुआ कि ये इतनी छोटी कैसे सारा रिट्रीट सेंटर संभालेंगी, पर उसने संभाल करके दिखाया। बाप दादी ने उनको लायक बनाया। बोल हमारे अनमोल अनमोल मधुर और युक्ति युक्त हो। हरेक को सबको समान प्यार दिया, चाहे लौकिक परिवार था चाहे अलौकिक। किसी ने कभी कंप्लेन नहीं की कि उनके लौकिक परिवार को ज्यादा प्यार किया। और पोजीशन भी देखो, मम्मा को दी, मम्मा को यज्ञ के निमित्त बनाया। तो हरेक समझता था मेरा बाबा। और बारह बा का प्यार मेरे से सबसे ज्यादा है। सहनशीलता गुण था और सदैव मौज में रहते थे। असंतुष्ट को भी संतुष्ट किया। और अपनी साइलेंस की पावर से सबको आगे बढ़ाया। और मधुबन में जो भी आते थे, कुछ न कुछ स्थूल और सूक्ष्म सौगात ले जाते थे, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। जो रसम अभी तक है, हर कर्म साक्षी दृष्टा त्रिकालदर्शी बनने के कारण पाप कर्म नहीं हुआ। एक रस अवस्था रही, निडर रहे, गुण दान ज्ञान धन दान करते रहे। और लास्ट पार्ट उनका, कर्मातीत स्टेज का ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस में रहे और ब्लेसिंग की कमाल रही। उदार चित, उदार दिल, गुण और शक्तियां विशेषता थी। सब में महादानी बनने में फ्रांक दिल बने। तो संतुष्टता का आधार प्राप्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप और संपन्नता। तो सर्व शक्तियां और खजाने बाप से प्राप्त करने हैं। अमृत वेला पावरफुल, ऐसे नहीं कि नियम से अमृत वेला बैठे और जुट के खाए। तो नेमीनाथ नहीं बनना है, पावरफुल अमृत वेला हो। सदैव रूहानियत में रहना है, सिंपल और सैंपल। सबको यूनिफॉर्म दे दिया तो इसलिए फैशन करने की, कपड़े के कलर चूज करने की, कौन सा कलर अभी पॉपुलर है आदि आदि सोचना नहीं पड़ता। वैराग्य की स्थिति, नाम मान शान मटेरियल वैभवों की, साधनों की इच्छा ना हो, तो यहां से ही हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सत्युग में तो होंगे ही। हमारी बुद्धि इतनी क्लियर हो जो सत्युगी नजारे हम सामने दे सके और हमारे सामने संपन्नता का भी क्लियर पिक्चर हो, तो वो देखने की बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। संगम युग का समय बहुत वैल्यूएबल है। वो तब होगा जब हमें समय की वैल्यू होगी। ज्ञान रत्नों की वैल्यू हो, मुरली की वैल्यू हो, मुरली कभी मिस ना करें, टेंशन ना हो कि मैं करता हूं मुझे करके दिखाना है, कंपैरिजन, कंपटीशन, ईर्षा कुछ ना हो। निश्चय बुद्धि, कोई भी डाउट ना हो, ये निश्चय हो जो कार्य बाबा ने दिया है वो बाबा कराएगा और हो जाएगा। धैर्यता हो, पुरुषार्थ सेवा करना मेरा फर्ज है, रिजल्ट मिलेंगे, अभी नहीं तो सत्युग में भी जरूर मिलेंगे। जो बीज हम डालते हैं वृक्षों का फल निकलेगा, कभी अभिमान न हो कि मैं करता हूँ, करावनहार बाबा है, मैं नहीं। हिम्मत नहीं हारनी है, दुख न देना है न लेना है। सहनशीलता भी बहुत हो, ये गुण सब धारण करने से क्या होगा, मैं भी संतुष्ट और मेरे साथी भी संतुष्ट। एक दो के सहयोग से, बाबा की मदद से, शक्ति स्वरूप से सफलता तो है ही। वायुमंडल शांत हो जाएगा, आनंदमय, टेंशन रहित और पावरफुल। परिस्थिति परिवर्तित हो जाएंगे, हर स्थान निर्विघ्न बन जाएगा और सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बन ही जाएगा। और अंत में वाह वाह के नारे बजेंगे, एकता से सहयोग और सहयोग से सफलता जरूर होंगी। तो ये है संतुष्ट आत्मा की निशानी। और सब ब्राह्मणों का लक्ष्य है, हमें संपन्न बनना है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो अपने को चेक करना है, यहाँ आप पट्टी में हो, खास साइलेंस में चेक करना कि मेरे में कौन से गुण की कमी है, कौन से अवगुण है, क्योंकि विकार बहुत सूक्ष्म है। देहाभिमान सबका फाउंडेशन है, और एक अवगुण दूसरों को खींच लाएगा, एक विकार दूसरों विकारों को लाएगा, एक गुण दूसरों को ले आएगा। तो देह अभिमानी क्या करेंगे, अपने देह को श्रृंगार करने में मस्त रहेंगे। दिन में 15-20 बार आईने में देखेंगे, बाल ठीक है, चेहरा ठीक है, आदि आदि। और रास्ते चलते भी देखते रहेंगे कि आजकल कौन सा मॉडर्न ड्रेस है, कौन से कलर की फैशन है, चाहे खरीदना हो न खरीदना हो, जरूरत है या नहीं है, पर अच्छा देखा तो खरीद लेंगे। और अपने देह और देह की हाल चाल से, मूवमेंट से सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक्टर्स एक्ट्रेस को फॉलो करेंगे, हेयर स्टाइल अपने फेवरेट हीरो की या हीरोइन की बनाएंगे। जो जिसके शौकीन होंगे, क्रिकेट के शौकीन होंगे तो क्रिकेटर की हेयर स्टाइल रखेंगे, और फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस का यदि फैन होगा तो उसको करेंगे। वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग एक्सरसाइज आदि करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास एक डांसर थी, वो डांसर को कहा गया था कि वेट ना बढ़े, वेट इतना ही रहे। तो बेचारी यंग थी, भूख तो लगती है ना, तो खाती तो है परंतु फिर अंगुली डालकर वॉमिट कर लेती। और तोल तोल के बिचारों को खाना पड़ता है, और शरीर का मेजरमेंट करना पड़ता है। फिर आता है अहंकार, मैंपन, अपने कुल का अभिमान, अपने धन का अभिमान, अपनी पोजीशन का अभिमान, ब्यूटी का अभिमान, और जो अभिमान वाले हैं दूसरों का अपना मान कर जल्दी कर देंगे, तुम तो हो ही बुद्धू। तो इसलिए अपमान करने में प्रवीण, और खुद को मान चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाते नाजुक स्वभाव वाले। काम विकार जो बड़े से बड़ा शत्रु है, तो क्या है उसका सूक्ष्म रूप है आकर्षण, प्रभावित होना, फैमिलियारिटी, नाम रूप का प्यार। देखो वास्तव में बाबा कहते हैं आपका फ्रेंड है एक बाबा, अच्छा बुरा समाचार उनको दो, परंतु ये व्यक्ति क्या करेंगे, उस फ्रेंड को पहले फोन करेंगे, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा। लोभ का सूक्ष्म रूप है कभी संतुष्ट नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए, और आजकल तो फैशन और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते रहते हैं, समझते हैं, हमको लेटेस्ट मॉडल चाहिए, 5G फोन और टेलीविजन, बड़ा स्क्रीन, कलर टेलीविजन, मोटर बाइक, नई कार, नई और मनहूस होते हैं। दान पुण्य करना में सोच सोच कर करते हैं, लाखों पति होंगे, 500-5000 दिया और समझेंगे मैंने तो बहुत कुछ किया, और फिर मोह का सूक्ष्म रूप है कि उसके साथ ही, जिसमें मोह है उसके साथ ही सब कुछ करेंगे, उसके सिवाय जैसे कि जीवन अधूरा, उसमें वैसे देखा है माताओं का बच्चों में मोह होता है तो क्या करती है, जिस बच्चे में मोह होता है ज्यादा उसका ख्याल ज्यादा करती है, उसके लिए उसके पसंद की चीज अलग कर देती है। एक माता एयरपोर्ट पर मिली, उसका बच्चा अमेरिका जा रहा था, कहती है मेरे बच्चे को जलेबी अच्छी लगती थी, अब उसको वहाँ कौन जलेबी खिलाएगा, मैं भी अभी जलेबी नहीं खाऊंगी। मुंह की बीमारी टाइम लगाती है। हमारे पास एक युगल था, एक को हमने एक स्थान पर भेजा, दूसरे को दूसरे, परंतु मोह बहुत था तो बीच बीच में वो माता होशियार थी और भाई था थोड़ा आलसी, तो कोई सेंटर पर रखने तैयार नहीं था, तो बहन ने अपने पास बुलाया, उसके लिए बिजनेस खोल दिया और बहुत सालों के बाद मोह छूटा। ईर्ष्या, स्वमान की कमी तो ईर्ष्या है, तो इसलिए स्वमान बढ़ाना। बाबा तो बच्चों को कहते हैं आप सभी विशेष हो, कितने टाइटल देते हैं आप, ज्ञान गंगा हो आप, सल्वेशन आर्मी, शिव शक्ति सेना आदि आदि कितने टाइटल देते हैं। और अलबेलापन, फालतू वेस्ट करते हैं, टाइम का वैल्यू नहीं, समय संकल्प शक्ति धन वैल्यू नहीं, और आलस्य, जो आलसी होते हैं ना, काम नहीं करेंगे, सोचते फलाना करेंगा, फलाने की ड्यूटी है, कचरा देखेंगे उठाएंगा नहीं, और कहेंगे मैं थक गया हूँ, आंधिया भी आराम पसंद, और बैर बदला लेना है। बाबा कहता है बदला मत लो, बदल करके दिखाओ। तो इसलिए देखना है कि सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना हो, रूहानी दृष्टि वृत्ति हो। रूहानी दृष्टि वृत्ति और प्यार होगा ना, तो कई अवगुण छूट जाएंगे। प्यार है तो क्रोध भी कम आएगा, तो क्रोध है दूसरा दुश्मन, काम पहला दुश्मन, क्रोध दूसरा दुश्मन, चिड़चिड़ापन सूक्ष्म रूप सहन नहीं कर सकते, कहेंगे कितनी बारी का फिर भी करता रहता है, क्या करें, मारपीट करेंगे। तो शांति की शक्ति, सहन शक्ति धारण करने से फिर क्रोध नहीं आएगा। तो इस रीति से अपने आप को चेक करना है, संपन्न बनना है। ओम शांति।
तो अच्छा लगा सभी को? अभी आप लोगों के लिए और एक लॉटरी है, आप चाहे जो प्रश्न पूछना चाहो पूछ सकते हैं दीदी से। तो कौन आएगा सामने पहले?
हाँ
साकार मम्मा बाबा की अनुभव की बातें सुनाओ, कहते
हैं
साकार मम्मा बाबा, क्योंकि आपने पालना ली है ना, तो वो अनुभव की बातें सुनाओ साकार मम्मा बाबा की।
मम्मा को मिलने पहले दिन ही चांस मिला, क्या था मुंबई में मम्मा आई थी, 9 मास रही 1962 में। तो क्या है कि मेरी सहेली ज्ञान में आई थी, तो उसने हमको संडे को निमंत्रण दिया भाषण सुनने आओ, और जब ज्ञान सुना मुझे ये अच्छा लगा पवित्र रहना है, क्योंकि डॉक्टर थी, मुझे सोशल सर्विस करनी थी, शादी नहीं की थी जब तक ज्ञान में आई थी। उस समय हमने अपने पिता को कहा 17 साल की उम्र में या तो मैं डॉक्टर बनूंगी या शादी करूंगी। क्या होता है, शादी करो माना, जैसे बाबा कहते हैं बर्बादी, कहेंगे बच्चे पैदा करो, बच्चों को संभालो, जो भी सोशल एक्टिविटी है अटेंड करो, सासू रिटायर हो जाती है, बहू को कहेंगे अभी हमने सब कुछ कर लिया, अभी तुम करो, अभी तुम्हारा टर्न है। तो इसलिए मैंने कहा दोनों काम नहीं, क्योंकि मेडिकल स्टडी भी डिफिकल्ट है। तो मुझे ये ज्ञान इतने अच्छा लगा कि हम शिव बाबा को साथी बनाते हैं। तो हमने कहा अभी तो हमको हजार हाथ वाला भगवान मिल गया पति, अभी हमको क्या कमी है। तो मम्मा की मुरली में मम्मा कहती थी कि कभी किसी की बुराई मत देखो, बुराई देखने से वो बुराई तुम्हारे में आ जाएंगे। और मिसाल अच्छे देती थी कि देखो आज किसी ने घर का कचरा निकाल कर आंगन में डाला, क्या आप अपने आंगन में ले आएंगे? तो सब अपनी बुराई निकालना चाहते हैं, आप क्यों लाना चाहते हैं? देखने से आ जाएंगे। और हमने देखा भी है कई बार कोई दूसरे की मजाक करता है कि इसकी ये आदत है, और खुद फिर वही आदत धारण कर लेते हैं। दूसरा मम्मा कहती थी कि उल्टी करनी होती है तो लोग क्या करेंगे, रास्ते में है तो किनारे पर जाकर करेंगे, और घर में है तो वॉश बेसिन में करेंगे, फ्लश हो जाए। तो यदि कोई में कोई खराब आदत है तो उसको देखने से क्या होगा, सबकी जैसे उल्टी देखने से क्या होगा, जो भी रास्ते में जाएंगे उसको नाक बंद करना पड़ेगा और साइड में चलना पड़ेगा, और फिर उस उल्टी पर मक्खी बैठेंगी, वो मक्खी किसी के खाने पर बैठेंगे, उसको भी बीमार करेंगे। इसलिए किसकी बुराई है उसकी बात दूसरों को करके उसका मन खराब नहीं करो, सीनियर को बताओ तो वो उसको शिक्षा देंगे, सुधारेंगे, बाकी आप उस पर ध्यान न दो। और मम्मा सब स्थानों पर जाते थे, छोटे बड़े स्नान स्थान पर जहां भी बाबा भेजते थे, हाँ जी का पाठ पक्का। ब्रह्मा बाबा सिर्फ बड़े बड़े शहरों में कलकत्ता बॉम्बे कानपुर आदि जाते थे, मम्मा छोटे छोटे स्थान पर भी जाती थी। तो मम्मा कभी अमृत वेला मिस नहीं करते थे, और यदि मधुबन में होती थी ब्रह्मा बाबा इस गद्दी पर बैठते थे एक गद्दी पर, मम्मा दूसरी गद्दी पर छोटे हॉल में बैठते थे, तो क्या होता था, मम्मा सारा समय ऐसे बैठकर मुरली सुनती थी। और ब्रह्मा बाबा के आने पहले कभी कभी उसको मुरली चलाने का था, तो जैसे भी खड़ाव का आवाज आता था कि ब्रह्मा बाबा आए, मम्मा शांत हो जाती थी, चुप। और यज्ञ में भी जब 14 साल रहे तो ब्रह्मा बाबा जब तक बुलाए नहीं तब तक ब्रह्मा बाबा के पास नहीं जाते थे। पर ब्रजेंद्र दादी जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहती थी, उसके साथ सारी रात बैठकर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया फोन पर बात करके सुनती थी। तो जब मम्मा को कैंसर हुआ तो नर्सिस वगैरह हॉस्पिटल के सब देखने आते थे कि ये कौन है ब्रह्मा कुमारी की हेड, और कभी भी चेहरा उदास या दुख दर्द से पीड़ित नहीं देखने में आया अंत तक। लास्ट दिन भी गुरुवार था, बाबा अमृत पिलाते थे, मम्मा भोग देती थी, तो लास्ट दिन भी भोग दिया 12 बजे। उन दिनों में भोग सवेरे नहीं लगता था 12 बजे, क्योंकि सेंटरों पर माताएं 12 बजे तक आ नहीं सकती थी, तो 12 बजे भोग लगता था भोजन के पहले, और 4 बजे के करीब शरीर छोड़ा। लास्ट दिन तक भोग दिया। तो जब मुंबई से 4 जून को छुट्टी ली तो क्या हुआ, फेफड़ों में तो पानी भर गया था, तो सांस लेने में तकलीफ थी, परंतु ऐसे प्रबंध किया था, लोग एक तरफ से आते थे दूसरे तरफ से जाते थे, तो जब सामने से आते थे मम्मा ठीक सांस लेती थी, जब वहां से जाते थे गहरा सांस लेते थे। तो इसी रीत से मम्मा ने थोड़े ही सालों में सेवा से, सिर्फ मनसा वाचा सेवा से ऊंच पद पा, क्योंकि जब यज्ञ में आई उसका बाप नहीं था, इसलिए हाथ खाली कुमारी थी। तो हमारे सामने दोनों एग्जाम पर मम्मा कुमारी 14-16 साल के जब ज्ञान में आई थी, और ब्रह्मा बाबा बूढ़ा 60 साल का परिवार वाला, तो कोई ऐसे भी नहीं कहते सकते हैं कि हम तो बहुत यंग है, ज्ञान हमारे लिए नहीं, और बूढ़े भी नहीं कह सकते हैं कि हम तो अभी बहुत बूढ़े हो गए, पढ़ाई कौन करेगा, पढ़ाई यंग लोगों के लिए है। दोनों एग्जाम्पल बाबा ने दिए हमें यज्ञ में। और ब्रह्मा बाबा को मैं 1.5 साल के बाल मिली, तो मैं मधुबन आई थी, निर्मल शांता दादी के साथ हम टूर करते करते मधुबन आई थी 64 में, और ब्रह्मा बाबा की कहानी बहुत दादियों से सुनी थी बंबई में। ब्रजेंद्र दादी थी, वो फर्स्ट क्लास कहानियां सुनाती थी ब्रह्मा बाबा की यज्ञ की, हम सुनते थे। तो इसलिए जैसे कि ब्रह्मा बाबा को जानते ही है और पिता के रूप से, टीचर के रूप से, गुरु के रूप से बहुत रिगार्ड था। तो मम्मा को जब बम्बई में मैं मिली, मैंने पूछा, मैं अभी प्रैक्टिस नहीं करूं और सेवा में लग जाऊं। मम्मा ने कहा मैं ब्रह्मा बाबा से पूछना। तो जब मधुबन आई तो ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा कहे नहीं, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, डबल डॉक्टर बनना है, रूहानी और जिस्मानी दोनों सेवा करनी है। तो इसलिए फिर मैं मुंबई में डिस्पेंसरी खोली। वैसे मेरा दिल था कि मैं कोई छोटे गांव में जहां डॉक्टर नहीं है वहां जाऊं, बम्बई में तो बहुत डॉक्टर्स हैं। और मेरे लौकिक पिताजी की इच्छा थी मैं कामदी वाली जहाँ रहती थी वहाँ सेवा करें। तो मैंने ये भी ब्रह्मा बाबा से पूछा क्या करें। बाबा कहे कांदी वाली भी तो गांवड़ा है ना, वहीं कर, क्योंकि सेंट्रल बॉम्बे से तो कांदीवली दूर भी था और गांव भी जैसा था। तो जब बम्बई में उस समय सिर्फ दो सेंटर थे, सायन और वाटरलो, तो रमेश भाई ने कहा कि देखो न कांदीवली के तरफ मकान का क्या भाव है, क्योंकि शहर में तो बहुत दाम होता है मकान का और आश्रम फ्लैट में नहीं शोभता। तो मैंने सोचा कि हमारी बहनों को हमारे पिताजी ने शादी में फ्लैट दिया, क्यों नहीं मैं लौकिक पिता से मांगो, क्योंकि हमारा बंगलो था उसके पीछे जमीन खाली पड़ी थी। पर पिताजी से पूछने के पहले ब्रह्मा बाबा से पूछा कि क्या करें। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा अच्छा तुम्हारा बाप प्लॉट देगा तो ये अलौकिक बाप मकान बनाएगा। तो मैंने हमारे लोग के पिता से पूछा क्या मुझे प्लॉट मिल सकता है। हमारे पिताजी ने कहा नहीं, लौकिक बच्चे इतना नजदीक ना रहे, तुम फ्लैट ढूंढो मैं पैसा दूंगा। फिर डिस्पेंसरी कांदीवली में थी तो मकान भी कांदीवली में लेना पड़ा। तो उन दिनों में फ्लैट तो कितने छोटे बनते हैं, 10x12, 10x14 के कमरे होते हैं। तो हमने एक के बजाय दो फ्लैट खरीदा और एक फ्लैट का हॉल बनाया, एक फ्लैट रहना, कोर्स कराना, किचन बाथरूम। और फिर ब्रह्मा बाबा वहाँ आए थे तो जितना भी बन गया था, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, सर्टिफिकेट नहीं मिला था NOC, तो ब्रह्मा बाबा आकर देख कर भी गए। और जो हमारे कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट अचानक ही आए तो थोड़े कुछ स्टूडेंट थे उनसे भी मिले। और मधुबन में तो आना होता ही रहता था, बाबा से मिलना तो होता ही रहता था। तो ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या हम सभी को मालूम होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, उस समय उनके रास्ते में खड़े रह जाते थे। तो बाबा कम से कम दृष्टि देता था, हम शांति कहता था। तो इसी रीति से हम लोग ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लेकर और भोजन के बाद ब्रह्मा बाबा के कमरे में जाते थे, क्योंकि हम लोग जल्दी भोजन लेते थे। और उस समय ब्रह्मा बाबा यदि ताश खेलते थे या चौपट खेलते थे, क्योंकि कोई कोई दादियां विशेष बाबा को फ्रेंड समझकर चौपट जरूर खेलती थी, और ब्रिजमोहन भाई ताश जरूर खेलता था। तो हमको मालूम होता था ये दिनचर्या, तो हम जरा पर्दा ऐसा करते थे, फिर बाबा कहते आओ बच्ची आओ बच्ची, तो हम प्रेक्षक के रूप में बैठ जाते थे बाबा के कमरे में। और 5:30 बजे हमको मालूम था कि ब्रह्मा बाबा खटिया पर आंगन में लेटा हुआ होगा, क्योंकि बाबा का जो अभी चप्पल उतारने का जगह है वहाँ खुली जगह थी, 3 बाजू वॉल थे, ऊपर से खुला था। तो शाम को 5:30 बजे वो वहाँ खटिया पर लेटता था। तो हम लोग जाते थे तो बाबा कुछ न कुछ ज्ञान की पॉइंट सुनाते थे, और ज्यादातर पार्टियों को एक बार ब्रह्मा भोजन खिलाता था साथ में बैठकर। हम लोग कभी परोसते थे, कभी सामने बैठकर खाते थे। तो ब्रह्मा बाबा को जैसे सब समझते थे हमारा बापा, और बाबा भी सभी को बच्चे बच्चे कहकर पुकारते थे, और चिड़िया को भी बच्ची, लेबरर को भी बच्चा, तो सबको बच्चे। और कभी देखता था लेबरर के पास गरम कपड़े नहीं है, तो फौरन लच्छू को कहता था बच्ची इसको स्वेटर दो। और अभी तक मधुबन में हर ठंडी सीजन में सबको ब्लैंकेट दिया जाता है, जब से बाबा ने वो शुरू की सिस्टम, वही सिस्टम सब चलती रही है। जब बाबा अव्यक्त हुए, सभी को बहुत शौक लगा, क्योंकि बाबा कहते थे मम्मा बाबा आपके साथ अंत तक रहेंगे, और बाबा चले गए, मम्मा चली गई। फिर दूसरे दिन जब दादी ने भोग लगाया, तब संदेश दिया मुरली कैसे चलेंगी, अव्यक्त मिलन कैसे होगा आदि आदि। फिर सभी शांत हो गए। ये दादी ने जो भी नहीं भी आए थे ना, बड़े बड़े भाई बहन सबको बुलाया, आओ मधुबन रिफ्रेश होते जाओ। और दीदी दादी ने ऐसा संभाल लिया यज्ञ कि मम्मा बाबा की खोट न आने दी। और शिवा बहुत बढ़ाई। ओम शांति।
सबको लगा कि दीदी ने हमारे साथ पर्सनल बातें की, लगा ऐसे कि क्लास लगी कि पर्सनल दीदी हमसे मिली है ना। सभी चाहते हैं बड़ों के पास हम मिलने जाएं। अब एक एक से तो मिल नहीं सकते हैं, लेकिन दीदी देखो समय निकालकर आए और सबको पर्सनल पालना का अनुभव कराया। यज्ञ में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में होते हुए भी पूरा एक घंटा आपके साथ बैठे, वरना बाहर की दुनिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोगों को मिलना है तो कितना मुश्किल होता है ना। तो दीदी अपना समय निकाल कर आए, आपको ज्ञान गंगा में स्नान कराया, अपने प्यार का सानिध्य दिया। दीदी को बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।